एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जो ऊपर से देखने पर बहुत शांत, बहुत सभ्य लगता है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन जिसकी सतह के नीचे मानवीय रिश्तों का एक ऐसा अंधेरा जंगल है कि पूछिए मत।
सच में,
फोर्ड मैडॉक्स फोर्ट का कालजयी उपन्यास द गुड सोल्जर।
बिल्कुल, और ये प्रकाशित भी हुआ था 1915 में, मतलब ठीक पहले विश्व युद्ध के बीचों बीच।
हाँ, जब दुनिया खुद ही उथल पुथल से गुजर रही थी।
सही कहा।
और फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड वो खुद भी एक काफी दिलचस्प लेखक और संपादक थे।
जी,
जेम्स जॉयस, हेमिंग्वे जैसे लेखकों को उन्होंने ही शुरू में बढ़ावा दिया।
और उनकी एक खास सोच थी लिखने को लेकर।
हाँ, वो मानते थे कि कहानी कोई सीधी लकीर नहीं होती।
बिल्कुल,
जैसे हमारी यादें होती हैं ना, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ और,
उछलती कूदती सी। हाँ बिल्कुल, उसी तरह से उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, जिसे वो इम्प्रेशनिज्म कहते थे।
और ये नाम भी द गुड सोल्जर है ना, थोड़ा अजीब लगता है कहानी जानने के बाद।
हाँ, असल में वो इसे द सैडेस्ट स्टोरी कहना चाहते थे,
सबसे दुखद कहानी, जो शायद ज्यादा सही होता
शायद, पर युद्ध का माहौल था तो प्रकाशक ने नाम बदलवा दिया। खैर, आज हम इसी दुखद कहानी की परतों को खोलेंगे।
हाँ, देखेंगे कि कैसे जो रिश्ते इतने आदर्श दिखते हैं वो असल में धोखे और जुनून की कैसी कच्ची नींव पर टिके हो सकते हैं।
और ये सवाल कि क्या हम सच में किसी दूसरे इंसान को कभी पूरी तरह जान भी सकते हैं या नहीं।
तो कहानी शुरू होती है जॉन डोवेल से।
जी,
कथावाचक।
हाँ,
एक अमीर अमेरिकी अपनी पत्नी फ्लोरेंस के साथ यूरोप के उन फैशनेबल स्पा शहरों में वक्त बिता रहा है।
जैसे जर्मनी का नाउहाइम।
जी, वहीं उनकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज जोड़े से, कैप्टन एडवर्ड एशबर्नम।
वही अच्छा सैनिक। हाँ, और उसकी पत्नी इलियोनोरा। डोवेल बताता है कि ये दोस्ती कोई 9 साल चली और बिल्कुल एक शांत खूबसूरत नृत्य की तरह थी।
सब कुछ सलीके से, दायरे में।
हाँ बिल्कुल, कोई उथल बुथल नहीं। डोवेल के लिए तो वो लोग समाज के स्तंभ थे, सभ्य, भरोसेमंद,
एक आदर्श तस्वीर। लेकिन जैसा अक्सर होता है,
जो दिखता है वो होता नहीं।
बिल्कुल, यहीं से उपन्यास का असली मर्म शुरू होता है। इस खूबसूरत मुखौटे के पीछे क्या है?
हाँ, क्योंकि जब फ्लोरेंस और एडवर्ड की अचानक मौत होती है, तब डोवेल पीछे मुड़कर देखता है और उसे समझ आता है
कि वो शांत नृत्य असल में क्या था।
वो एक तूफान था, झूठ का, धोखे का, दबे हुए जुनून का, और सबसे बड़ा सवाल जो उसे कचोटता है,
और हमें भी,
हाँ, कि मैं इतना अंधा कैसे रहा? क्या हम सच में किसी को जान पाते हैं?
तो चलिए इन चार किरदारों से मिलते हैं, जैसे डोवेल उन्हें शुरू में देखता है। जॉन डोवेल थोड़ा निष्क्रिय सा लगता है ना, अपनी बीमार पत्नी फ्लोरेंस की देखभाल में लगा हुआ।
फ्लोरेंस, वो नाजुक सी जिसे दिल की बीमारी है। एडवर्ड एशबर्नम, वो आकर्षक अंग्रेज सैनिक, गुड सोल्जर,
जमींदार भी है। और लियोनोरा, एडवर्ड की शांत, धार्मिक सी पत्नी, आदर्श पत्नी जैसी।
ये तो हुई ऊपरी बात, सतह की।
लेकिन नीचे,
नीचे कहानी बिल्कुल अलग है, और यही फोर्ड की वो खास कथा शैली, वो इम्प्रेशनिज्म काम आती है।
हाँ, डोवेल कहानी सीधे नहीं सुनाता, वो यादों में भटकता है।
हाँ, कभी आगे कभी पीछे, कोई एक बात उसे कुछ और याद दिला देती है। वो खुद भी उलझा हुआ है, अक्सर कहता है मुझे ठीक से नहीं पता।
वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उसकी समझ अधूरी है, उसकी यादें बिखरी हुई हैं, जैसे सचमुच होता है।
और फोर्ड यही दिखाना चाहते थे कि हम दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, टुकड़ों में, एहसासों से। कोई साफ सीधी कहानी नहीं होती जिंदगी की।
सही कहा। तो डोवेल की ये जो अविश्वसनीय कथा शैली है, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है,
ये कहानी के मूल सवाल को ही दिखाती है।
हाँ, कि सच्चाई कितनी कितनी मायावी है और हमारी समझ कितनी सीमित है। हम पाठक भी डोवेल के साथ उसी उलझन को महसूस करते हैं।
तो डोवेल धीरे धीरे क्या कहानी जोड़ पाता है, क्या पता चलता है उसे?
पता चलता है कि झूठ की बुनियाद तो बहुत बहुत पहले रखी गई थी। एडवर्ड ने लियोनोरा से शादी की और हनीमून से लौटते ही उसका पहला अफेयर शुरू हो गया।
अरे बाप रे, हनीमून से लौटते ही?
हाँ, और लियोनोरा ने उसे पकड़ लिया और बस यही उनके रिश्ते का पैटर्न बन गया।
और उधर फ्लोरेंस?
फ्लोरेंस ने अमेरिका में अपनी दिल की बीमारी का नाटक रचा था। क्यों? ताकि अमीर जॉन डोवेल से शादी कर सके, ऐशो आराम मिले और वैवाहिक जिम्मेदारियों से भी बच जाए।
अच्छा, मतलब दोनों शादियों की शुरुआत ही धोखे पर हुई। कमाल है।
बिल्कुल, और फिर ये चारों मिलते हैं जर्मनी के नाउहाइम स्पा में,
वो जगहें जो सेहत सुधारने के लिए थीं।
हाँ, वो इनके लिए भावनात्मक बिगाड़ का अड्डा बन गईं। एक तरह का व्यंग ही है ये,
बहुत गहरा व्यंग्य।
वहीं पे फ्लोरेंस और एडवर्ड का वो 9 साल लंबा अफेयर शुरू होता है,
डॉविल की नाक के नीचे।
हाँ, वो बेचारा तो यही समझता रहा कि सब कितने अच्छे दोस्त हैं। और इसी बीच एडवर्ड का एक और अफेयर होता है मैसी मेडन नाम की लड़की से,
जिसे भी दिल की बीमारी बताई जाती है।
हाँ, कमाल की बात है ना, लियोनोरा ये सब जानती है और एकदम शांत रह के सब संभालती हैं। फ्लोरेंस को बर्दाश्त करती है क्योंकि वो एडवर्ड के कर्ज चुकाने में मदद करती हैं, पर मनी मन
नफरत करती होगी,
जाहिर है।
और ये सब समाज के बने नियमों और दिखावे के पर्दे के पीछे चलता रहता है, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता।
सही बात है, लियोनोरा की हालत सोचिए, पति के धोखे, समाज में इज्जत, पैसे की तंगी, कितना कुछ झेल रही होगी वो।
कहानी में पहला मोड़ कब आता है? जब दरारें दिखने लगती हैं?
वो तब होता है जब मैसी मेडन की सचमुच दिल के दौरे से मौत हो जाती है।
हाँ, असली दिल का दौरा।
हाँ, एडवर्ड को उसके लिए वाकई दुख होता है और ये देखकर फ्लोरेंस को जलन होती है।
अच्छा।
हाँ, लियोनोरा इस मौके का फायदा उठाती है एडवर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए।
और ड्यूएल, हमारा कथावाचक
ड्यूएल, वो तो बस इसे एक दुखद हादसा मानता है और एडवर्ड की तारीफ करता है कि देखो कितना सहनशील है, उसे अंदाजा ही नहीं कि ये तो अंत की शुरुआत है।
वो लगातार गलत समझ रहा है, अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहा है। ये जानबूझ पर आंखें बंद रखना है या सिर्फ भोलापन?
कहना मुश्किल है, शायद दोनों। कहानी का जो सबसे सबसे विनाशकारी मोड़ है वो आता है नैन्सी राफर्ड के आने से।
नैन्सी राफर्ड, एशबर्नम परिवार की वार्ड?
हाँ, एक युवा लड़की। जैसे ही वो बड़ी होती है, एडवर्ड को उससे एक बहुत गहरा जुनूनी प्यार हो जाता है। उसके ख्याल में ये पवित्र प्यार था,
उसका आखिरी मौका शायद।
हाँ, उसे ऐसा ही लगता है। और जाहिर है, फ्लोरेंस के साथ उसका रिश्ता खत्म।
और फ्लोरेंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाती।
नहीं, जब वो एडवर्ड और नैन्सी को साथ देखती है, उसे समझ आ जाता है कि वो हार गई। वो अपने कमरे में जाती है और जहर खा लेती है।
हे भगवान!
इसके बाद तो सब कुछ बिखर जाता है। डॉविल, जो अभी भी काफी हद तक अनजान है, फ्लोरेंस का शव लेकर अमेरिका जाता है।
और पीछे लियोनोरा।
हाँ, उसकी गैर मौजूदगी में लियोनोरा अपना बदला लेती है। वो नैन्सी को एडवर्ड के सारे पिछले अफेयर्स के बारे में बताती है, सब कुछ।
नैन्सी की नजर में एडवर्ड की छवि को पूरी तरह तोड़ देती है।
बिल्कुल। फिर नैन्सी को भारत भेज दिया जाता है।
ये लियोनोरा ने क्यों किया, बदला लेने के लिए या नैन्सी को बचाने के लिए?
कौन जाने, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। एडवर्ड नैन्सी के प्यार में और अपनी हालत से निराश होकर डॉविल से एक अजीब सा सवाल पूछता है।
क्या?
कि क्या इंसान को खुश रहने का हक है? और फिर एक पेनाइफ से आत्महत्या कर लेता है। और जब नैन्सी को ये खबर मिलती है कि एडवर्ड मर गया, वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी, जो धोखेबाज निकला और अब मर भी गया, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, हमेशा के लिए।
कितनी कितनी भयानक त्रासदी है ये, एक के बाद एक मौतें और अंत में नैन्सी का पागलपन, फ्लोरेंस की नकली दिल की बीमारी, मैसी की असली बीमारी, एडवर्ड का वो भावुक दिल।
जो से ले डूबा।
हाँ, अब जब हम ये सब जानते हैं तो इन किरदारों को दोबारा देखना जरूरी है। एडवर्ड एशबर्नम अच्छा सैनिक, क्या विडंबना
है ना, बाहर से सम्मानित, आकर्षक, अंदर से बिल्कुल बेकाबू।
डुवेल कहता है वो सिर्फ वासना का मारा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रुमानियत उसे चलाती थी।
वो महिलाओं को बचाना चाहता था, पूजना चाहता था।
हाँ, और इसी कोशिश में उन्हें और खुद को बर्बाद करता गया। उसका जो सम्मान का कोड था, वो उसके जुनून के आगे टिक नहीं पाया। नैन्सी के लिए उसका प्यार शायद शायद सच्चा था, पर वो इतना नामुमकिन हो गया कि मौत ही उसे रास्ता लगा।
और लियोनोरा,
वो तो शायद सबसे पेचीदा है, एक धार्मिक महिला जिसे पति के पापों का बोझ उठाना पड़ा।
हाँ, उसका पूरा जीवन बदल गया। एक प्यार करने वाली पत्नी से वो एक कठोर हिसाब रखने वाली मैनेजर बन गई। उसकी सारी ताकत नियंत्रण पाने में लगी रही, एडवर्ड पर, पैसों पर, समाज में अपनी इज्जत पर।
इसके लिए उसने भावनात्मक क्रूरता भी दिखाई, ब्लैकमेल भी किया।
हाँ, लेकिन उसके हर काम के पीछे सालों का दर्द है, अपमान है, और शायद एडवर्ड के लिए एक अजीब किस्म का हताश प्यार भी है। अंत में वो दोबारा शादी कर लेती है, एक सामान्य जिंदगी पाती है, पर वो जीत खोखली लगती है।
फ्लोरेंस के बारे में हम सिर्फ डॉवेल की यादों से जानते हैं, तो वो कैसी दिखती है?
डॉवेल की बातों से लगता है कि वो चालाक थी, महत्वाकांक्षी थी, खुदगर्ज थी। उसकी दिल की बीमारी सिर्फ एक नाटक थी,
एक हथियार।
हाँ, पति को दूर रखने और अपनी मर्जी से जीने का हथियार। उसे पैसा चाहिए था, रुतबा चाहिए था, रोमांस चाहिए था, बिना किसी जिम्मेदारी के। उसकी पूरी जिंदगी एक परफॉर्मेंस थी। शायद आत्महत्या भी तभी की जब उसे लगा कि अब उसका नियंत्रण खत्म हो गया।
और खुद डोवेल, हमारा कथावाचक, वो कहाँ है इस सब में?
डोवेल वो तो एक निष्क्रिय दर्शक है, जैसे कोई पुरुष नर्स हो, सबकी देखभाल करता है पर किसी के अंदर के तूफान को समझ नहीं पाता।
उसका सफर अज्ञान से ज्ञान तक का है, पर वो ज्ञान भी अधूरा और दर्दनाक है।
हाँ, और ज्ञान मिलने के बाद भी वो जैसे जैसे भावनात्मक रूप से कटा हुआ सा रहता है। पूरी त्रासदी का विश्लेषण करता है पर उसे महसूस नहीं कर पाता। वो शायद हमारी उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जो मुश्किल सच्चाइयों से आंख चुराती है,
आरामदायक भ्रमों में रहना पसंद करती है।
बिल्कुल।
और नैन्सी, बेचारी नैन्सी।
नैन्सी तो मासूमियत का प्रतीक है जिसे बड़ों की दुनिया के भ्रष्टाचार ने पूरी तरह कुचल दिया। उसका पागल हो जाना इस उपन्यास का सबसे सबसे स्याह पहलू है। ये दिखाता है कि नैतिक पतन का असर कितना भयानक हो सकता है।
तो इन किरदारों और कहानी के जरिए फोर्ड किन बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं? एक तो साफ है, दिखावा बनाम हकीकत।
हाँ, वो एडवर्डियन समाज की ऊपरी चमक दमक
और उसके नीचे का अंधेरा, वासना, धोखा, निराशा।
समाज जैसे एक नाजुक सा पर्दा है जो इंसानी जज्बातों के बेकाबू समुंदर को छुपाने की कोशिश कर रहा है।
एडवर्ड खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और दूसरा बड़ा मुद्दा ज्ञान और याददाश्त। क्या हम सच में कुछ जान सकते हैं?
डुवेल की पूरी कहानी इसी सवाल से जूझती है। उसका भूलना, अटकना, घटनाओं को आगे पीछे बताना, ये सब दिखाता है कि हमारी याददाश्त कितनी अविश्वसनीय है।
शायद कोई एक सच होता ही नहीं।
हाँ, शायद सिर्फ व्यक्तिपरक एहसास होते हैं, इम्प्रेशंस। जैसा डुवेल खुद कहता है, कौन जानता है कि दूसरे के दिल में क्या है?
या अपने ही दिल में?
बिल्कुल, दूसरे का दिल एक अंधेरा जंगल है।
जुनून और परंपरा का टकराव भी है।
बहुत मजबूत। एडवर्ड का जुनून उसे समाज से टकराता है। लियोनोरा अपने जुनून को दबा देती है। ये उस समाज की आलोचना है जो सच्चाई से ज्यादा दिखावे को अहमियत देता है।
और एक और बात, संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप।
हाँ, ये त्रासदी संवादहीनता की भी है। ये पात्र खुलकर ईमानदारी से बात ही नहीं कर पाते। अगर उन्होंने की होती तो शायद ये सब न होता।
शायद सामाजिक बंधन, शर्म, डर सब रोकते हैं। डोवेल का 9 साल तक अंधेरे में रहना इसी का नतीजा है।
ये उपन्यास पढ़ते हुए एक अजीब सी बेचैनी होती है, सिर्फ दुख नहीं।
हाँ, बेचैनी, एक डर जो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे डोवेल की दुनिया टूटती है, पाठक को भी लगता है कि कुछ भी भरोसे के लायक नहीं है।
रिश्तों पर सवाल उठते हैं,
इंसानी फितरत पर सवाल उठते हैं। किरदारों के लिए दया भी आती है, एडवर्ड और नैन्सी के लिए सबसे ज्यादा, पर शायद लियोनोरा और फ्लोरेंस के लिए भी। वो भी कहीं ना कहीं हालात की शिकार थी।
और साहित्यिक नजरिए से देखें तो इसकी क्या विरासत है?
इसने उपन्यास लिखने का तरीका बदल दिया। वो अविश्वसनीय कथावाचक, वो टाइम शिफ्ट, वो इम्प्रेशनिज्म, ये सब आधुनिक साहित्य का हिस्सा बन गया।
ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी त्रासदियां अक्सर बंद दरवाजों के पीछे शांत घरों में होती हैं।
हाँ, वो जो शालीन सतहें हैं वो बहुत पतली हो सकती हैं, कभी भी टूट सकती हैं।
तो अंत में ये कहानी हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और सच्चाई को समझने की हमारी अपनी सीमाओं के बारे में क्या सिखाती है?
शायद यही कि हम जिसे जानते हैं उसे कितना कम जानते हैं। हर इंसान वाकई एक पहेली है, एक अंधेरा जंगल, और दिखावे के पीछे अक्सर ऐसी सच्चाइयां छिपी होती हैं जो हमें हिला सकती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।